दिन भर तारीख 10 सितंबर दिन मंगलवार। मैं हूँ मानसी दाश। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था में पाकिस्तान ने कहा, बंदूक की नोक पर भारत कर रहा है जम्मू कश्मीर में बदलाव।
टू टर्न बाय फोर्स ऑफ आर्म्स जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम्स मेजॉरिटी इनटू ए माइनॉरिटी।
लगातार पाबंदियों के बीच रह रहे श्रीनगर के लोगों का दर्द सुनवाएंगे खास रिपोर्ट।
यहाँ सब सहमे हुए, दम घुट रहा है। आज रात को मैंने इतना रोया कि बात ही नहीं, क्योंकि दम घुट रहा है।
और क्या मॉब लिंचिंग के मामलों की जांच में पुलिस कर रही है कोताही?
कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन को खुद बिगाड़ देता है तो पनिशमेंट है लॉ में।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में आज भारत प्रशासित कश्मीर को लेकर बहस हो रही है। पाकिस्तान ने परिषद से कहा है कि संयुक्त राष्ट्र को कश्मीर के हालात की जांच करनी चाहिए। भारत ने अगस्त में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था। तब से ही वहां कड़ी सुरक्षा लागू है, मोबाइल और इंटरनेट पर पाबंदी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जिनेवा में भारत की इस दलील को खारिज किया कि कश्मीर उसका आंतरिक मामला है। दूसरी तरफ भारत ने पाकिस्तान और चीन के उस साझा बयान को खारिज कर दिया है जिसमें कश्मीर को एक ऐतिहासिक विवाद बताया गया था और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दखल से इसे सुलझाने की बात कही गई थी। इराक के करबला में मुहर्रम के दिन भगदड़ की खबर है। इस भगदड़ में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है। करबला में शिया समुदाय के मुहर्रम जुलूस के दौरान यह हादसा हुआ। भगदड़ के कारणों की अब तक जानकारी नहीं हो सकी है। यूरोपीय संघ की नई प्रमुख उर्जुला फॉन डेर लाइन ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। उर्जुला ने आयुक्तों की अपनी टीम में कुछ नए और कुछ पुराने चेहरों को मौका दिया है। हॉलैंड के फ्रेंस टिमरमैंस को इस बार भी वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी मिली है। वो जलवायु परिवर्तन से जुड़े काम देखेंगे। व्यापार आयुक्त के लिए उर्जुला ने आयरलैंड के फिल होगेन को चुना है। यूरोपीय संघ की नई प्रमुख ने कहा,
I keep saying that the Brexit we never wanted, but we respect decisions that are taken.
मैं हमेशा से ये कहती रही हूँ कि हम ब्रेग्जिट कभी नहीं चाहते थे, लेकिन हम अपने ब्रितानी दोस्तों के फैसले की इज्जत करते हैं। ब्रेग्जिट किसी चीज़ की आखिरी कड़ी नहीं है, ये आने वाले कल में एक नए रिश्ते की शुरुआत है और मैं ये रिश्ता चाहती हूँ जैसा ये बीते दिनों में था। आने वाले कल में भी अच्छे रिश्ते रहें, इस लिहाज से मुझे लगता है कि ट्रेड कमिश्नर फिल होगन एक बेहतरीन पसंद है। जिन व्यापार समझौतों को लेकर हमारी बातचीत चल रही है वो उसकी जिम्मेदारी देखेंगे। ये थे यूरोपीय संघ की नई प्रमुख के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो सीरिया के उत्तर पूर्वी इलाके में एक सुरक्षित क्षेत्र बनाने को लेकर हुए समझौते के अमल में अड़चन खड़ी कर रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कावसोग्लू का कहना है कि अमेरिका ने इस दिशा में अभी तक जो कदम उठाए हैं वो दिखावटी किस्म के हैं। तुर्की की दक्षिणी सीमा से लगे एक छोटे से सीरियाई इलाके में शनिवार को अमेरिका और तुर्की के सैनिकों ने साझा गश्त की, लेकिन दोनों देशों के बीच गश्त वाले इलाके के क्षेत्रफल को लेकर मतभेद था। इसका मकसद सीरियाई कुर्द लड़ाकों को सीमा से दूर खदेड़ना था। इन कुर्द लड़ाकों ने खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी गुट के खिलाफ मुहिम में अमेरिका का साथ दिया था, लेकिन तुर्की उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। जापान ने संकेत दिया है कि वो 8 साल पहले आई सुनामी में बर्बाद हुए फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से रेडियो एक्टिव जल समुद्र में छोड़ने के लिए मजबूर हो सकता है। इस रेडियो एक्टिव जल की मात्रा लाखों टन है। इसका इस्तेमाल दुर्घटना के बाद परमाणु संयंत्रों को ठंडा रखने के लिए किया गया था। इस रेडियो एक्टिव जल को फिलहाल बड़ी टंकियों में रखा गया है, लेकिन इसे रखने की जगह कम पड़ती जा रही है। जापान के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि उनके पास इस पानी को प्रशांत महासागर में बहा देने के अलावा का विकल्प रह गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये एक घंटे का विशेष कार्यक्रम है और आप इसे रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत भारत प्रशासित कश्मीर से जुड़ी खबर से। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत बंदूक की नोक पर कश्मीर में जनसांख्यिकी बदलाव लाना चाहता है। पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आज स्विट्जरलैंड के जनीवा में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक सम्मेलन के दौरान आया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन का ये सम्मेलन कल शुरू हुआ है और सितंबर 27 तक जारी रहेगा। कल अपने बयान में संगठन की कमिश्नर ने भारत प्रशासित कश्मीर में जारी स्थिति पर गहरी चिंता जताई थी। पूरी रिपोर्ट के साथ बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली।
पिछले माह कश्मीर के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में बहुत सफलता हासिल न होने के बावजूद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को आज फिर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन में उठाया और वो भी बहुत आक्रामकता के साथ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अपनी तकरीबन 10 मिनट की स्पीच के शुरुआत में ही इल्ज़ाम लगाया कि भारत बंदूक के बल पर जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की आबादी कम करना चाहता है।
To turn by force of arms, Jammu and Kashmir Muslims majority into
वो हथियार की ताकत से जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को अल्पसंख्यक बना देना चाहते हैं। भारत ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के मामले में जो एक तरफा फैसला लिया, एक ऐसे इलाके के बारे में जिसको लेकर विवाद रहा है और जो संयुक्त राष्ट्र के सामने रहा है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध है। ये थे पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी। 5 अगस्त के फैसले में भारतीय हुकूमत ने एक पूर्ण राज्य जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। 5 अगस्त के पहले के जम्मू कश्मीर का एक और मुस्लिम बहुल इलाका अब लद्दाख का हिस्सा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री का कहना था कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के समक्ष दशकों से रहा है और 16 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर के विवाद पर जो बहस हुई वो इस बात का सबूत है कि ये भारत का आंतरिक मामला नहीं है। 16 अगस्त की सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान को चीन के अलावा दूसरे देशों से समर्थन हासिल नहीं हो पाया था। कुरैशी ने जम्मू कश्मीर के मामले को रवांडा सबरिनित्जा जैसे जातीय और नस्लीय नरसंहार से भी जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि भारत कश्मीर में अपने जुल्म को छुपाने के लिए आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जो निहायत ही शर्मनाक है। कुरैशी ने दावा किया,
I have every fear that India will once again resort to false flag operations and the use.
मुझे डर है कि भारत इस नाम पर कई तरह की कार्रवाई शुरू करेगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस तरफ से हटाने के लिए आतंकवाद जैसे शब्दों को गढ़ेगा, यहाँ तक कि भारत हम पर हमला भी कर सकता है। ये थे पाकिस्तान के विदेश मंत्री के शब्द। पाकिस्तान ने मांग की है कि कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल फौरन बंद हो, कर्फ्यू और संचार माध्यमों पर लगी रोक को खत्म किया जाए और राजनीतिक कैदियों की रिहाई हो। कुरैशी ने कहा कि कश्मीर के हालात की जांच एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा की जानी चाहिए जिसे पाकिस्तान अपने क्षेत्र में जाने देने को तैयार है। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कमीशन की बैठक अभी भी चल रही है और इस पर अभी बस कुछ ही सेकंड पहले भारत के प्रतिनिधि ने भी अपना पक्ष रखा है। फैसल मोहम्मद अली लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। फैसल साहब हमारे साथ स्टूडियो में भी हैं। फैसल साहब, क्या क्या कहा भारत के प्रतिनिधि ने?
मानसी, थोड़ी देर से शुरू ही भारत की प्रतिक्रिया 6 बजे आनी थी लेकिन देर से शुरू ही विजय सिंह ठाकुर थी। उन्होंने बहुत ही छोटा सा एक भाषण दिया जिसमें पाकिस्तान को एक तो आतंकवाद का, ग्लोबल आतंकवाद का केंद्र बताया और कहा कि वो भारत के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है। भारत ने जम्मू कश्मीर के ऊपर जो फैसला लिया है वो संसद में बहस के बाद लिया गया है और उस पर पूरी तरह से उसको समर्थन हासिल है। उनका ये भी कहना था कि वहाँ किसी तरह का बंद नहीं है, भारत को ख़तरा था इसीलिए जो है वो इस तरह के इकदाम उठाए गए हैं, इस तरह के कदम उठाए गए हैं ताकि वहाँ कुछ सुरक्षा की दृष्टि से कदम उठाए गए हैं और बेसिक सर्विसेज जो हैं आम लोगों की ज़रूरत की
रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनकी सप्लाई जारी है। उन्होंने छोटा सा भाषण दिया और ये कहा कि बाकी जो उनका भाषण होगा वो UNHRC के वेबसाइट पर मौजूद होगा। बस इतना कहकर उन्होंने अपना भाषण ख़त्म किया।
जी, ताज़ा जानकारी के लिए शुक्रिया फैसल मोहम्मद अली। पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ PTI से प्रांतीय विधानसभा में पूर्व विधायक बलदेव कुमार सिंह ने भारत से राजनीतिक शरण देने की गुहार लगाई है। बलदेव खैबर पख्तूनख्वा के बारीकोट से विधायक रहे हैं और फिलहाल अपने परिवार के साथ भारत में हैं। BBC संवाददाता अरविंद छाबड़ा ने उनसे बात की और उनसे भारत से शरण मांगने के कारण पूछे।
पंजाब में मेरे ससुराल हैं, बल्कि बच्ची इधर आई हुई थी, मैंने शादी यहाँ से की हुई है, ठीक है। इस तरह मैंने सालम के लिए जो अप्लाई की है वो यहाँ से मेरे लिए आसान थी, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट बार बार अनाउंसमेंट कर रही थी कि जितने भी पाकिस्तानी हैं अगर वहाँ उनको तकलीफ़ है तो हिंदुस्तान आ सकते।
तो क्या तकलीफ है आपको वहाँ पर?
बहुत तकलीफ़ है। अगर एक बंदा अपने राइट्स के बारे में ना पूछ सके तो इससे बड़े और कुछ है? और जो आपकी बच्चियाँ चली जाएँ तो फिर आप पे क्या गुजरेगा?
किस तरह के राइट्स की वायलेशन की बात कर रहे हैं?
जो मेरे हकूक़ हैं मुझे ना मिले, मेरी मिनॉरिटी के हकूक़ हैं उनको ना मिले तो क्या है?
आपका कहना है कि जो आपकी कम्युनिटी है सिखों को राइट्स नहीं मिल रहे हैं वहाँ पर?
सिखों को भी नहीं मिल रहे हैं, हिंदुओं को भी नहीं मिल रहे हैं, क्रिश्चियन को भी नहीं मिल रहे हैं, मुसलमानों को भी नहीं मिल रहे हैं।
क्यों ऐसा हो रहा है वहाँ पर? कौन कर रहा है
वहाँ पर? हुकूमत कर रही है। हुकूमत के पास कोई इतना है नहीं जितने उसने अपने लिए मसले बनाए हुए हैं। पहले खान साहब वादे करते थे कि मेरे साथ चोर लपेंगे वो नहीं आएंगे, आज उसके साथ सारे चोर उधर ही हैं, उसके पार्टी में हैं।
तो क्या आपने ये सारी बातों को लेकर, अपनी तकलीफ़ों को लेकर अपनी पार्टी से बात की? उनका क्या कहना है?
पार्टी से बल्कि मैंने और रहना नहीं था तो मैंने पार्टी से बात क्या करनी थी? मैंने अपने बच्चों का मुस्तकबिल, मैंने अपना मुस्तकबिल देख लिया।
मतलब आपने पाकिस्तान से भारत ही क्यों चुना, हिंदुस्तान ही क्यों चुना यहाँ आज़ाए इलम के लिए?
भारत इसलिए चुना है कि मेरे बच्चों का मैंने मुस्तकबिल बनवाना है। बाहर लोग कहते हैं कि बाहर कैनेडा चले जाओ, यूरोप चले जाओ, वहाँ लाइफ बन जाती है, मगर मैं कहता हूँ वहाँ लाइफ नहीं बनती, क्योंकि आखिरकार हम लोगों को अपने परिवार अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए इस तरह जगह का चुनाव करना चाहिए जहाँ हमारे धर्म के प्रचार हो सके। वहाँ
आपके खिलाफ भी कोई कत्ल का मुकदमा है, वो क्या कहेंगे उसके बारे में? क्या
बिल्कुल कत्ल का मुकदमा हुआ था, उसमें मैं बाइज्जत बरी हुआ हूँ, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से उसमें बरी हो गया
हुआ।
झूठा मुकदमा ही था, झूठा मुकदमा जिसमें मैं बरी हो गया हूँ इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में। 17 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट का जज आया तो जज के सामने मैंने कह दिया पूरन सिंह के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ हूँ, 17 महीने हो गए और CM का जोर है, परवेज़ खटक साहब का जोर है और वो कह रहे हैं कि केस को अभी नहीं चलाना। कहते हैं अच्छा, मैंने कहा आप कह रहे हैं कि अदलिया आज़ाद है तो मैंने कहा ये किस तरह अदलिया है? उसने ATC जज को बुलाया, उसको कहा कि मुझे 3 महीने में रिपोर्ट चाहिए, अगर ये बंदा गुनाहगार है तो इसको सजा दे दो, अगर बेगुनाह है तो इसको बरी कर दो।
ये बताएं कि आपको डर किस है?
डर तो जाहिर ही बात है कि मुझे डर है कि अगर मैं उधर सच बोलूँगा तो फिर मुझे किसी और केस में फंसा देंगे।
पाक प्रधानमंत्री की पार्टी के पूर्व विधायक ने भारत से मांगी राजनीतिक शरण, उनसे बात कर रहे थे अरविंद छाबड़ा। और बलवंत सिंह की अगर बात करें तो 2016 में पाकिस्तान की PTI ने ही के ही एक नेता सुरेन सिंह की हत्या के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, हालांकि 2018 में उन्हें इस आरोप से बरी भी किया गया था। बलदेव सिंह ने पाकिस्तान पर कई आरोप लगाए हैं, अत्याचार करने के और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में हिंसा के। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए अब से कुछ देर पहले मैंने इस्लामाबाद में मौजूद BBC संवाददाता रिफतुल्ला खान से बात की।
जो बलदीव कुमार है इनका ताल्लुक जो है स्वात के इलाके से है जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा का एक हिस्सा है। इनके वहाँ पे भाई भी रहते हैं, 2 भाई है, इनकी एक वालिदा भी है वो भी इधर ही रहती है, इनका एक भाई जो है वो काउंसलर भी है और इनका ताल्लुक जो है वो जो रूलिंग पार्टी है यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में और जो सेंटर में इमरान खान साहब की जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। ये जब लास्ट इलेक्शन हुए थे 2013 में तो उसमें जो रिजर्व सीट्स आए थे उसके अंदर जो एक सरदार सुरेन सिंह थे जो भी सिख कम्युनिटी से थे और उसमें सेकंड प्रायोरिटी पे जो है बलदेव कुमार जो है इनका नाम आया था। जब कोई ये रिजर्व सीट्स पे जो बंदा इलेक्ट हो जाता है अगर वो फोर्थ हो जाता है किसी वजह से वो रिजाइन कर जाता है तो जो सेकंड प्रायोरिटी पे जिसका नाम होता है वो फिर मुंतखब हो जाता है। लेकिन ये 2016 में जो है वो ये सरदार सुरेन सिंह जो है उसके ऊपर एक मर्डर अटैक हुआ, وہ قتل ہوا، ہلاک ہوا، اور اس کا جو الزام تھا وہ بلدیو کمار اور چھ اس کے ساتھ پانچ اور بندے تھے ان پر یہ الزام لگایا،
اور اس معاملے میں بلدیو کمار کی گرفتاری بھی ہوئی تھی.
وہ بلدیو کمار اور ساتھ میں جو اور لوگ تھے یہ گرفتار ہوئے اور یہ تقریباً دو سال تک جیل میں تھے. ٹرائل کورٹ میں ان کے اوپر کیس چلا لیکن کیس میں ان کے اوپر کوئی پروف نہیں ہوا، یہ بری ہو گئے، یہ ایکوٹ ہو گئے، یہ ایکوٹ ہو گئے. لیکن جس وقت ان کے اوپر جو ہے الزام لگا، آروپ لگا قتل کا، تو جو رولنگ پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف انہوں نے اس کی ممبرشپ ختم کر دی تھی. ابھی آج جو ہے مجھے یہاں پہ رولنگ پارٹی کے ایک آفیشل نے یہ کنفرم کیا کہ اس کی پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے جو یہاں کی رولنگ پارٹی ہے.
جی.
تو اس کے بعد پھر یہ الزام سے تو بری ہوا لیکن یہ اس کو ممبر تو بننا تھا، جو لا تھی لا کے انڈر تو اس نے ممبر بننا تھا کیونکہ وہ سردار سورن سنگھ تو فوت ہو چکے تھے.
جی.
تو پھر جو یہاں پہ رولنگ پارٹی تھی انہوں نے ڈیلنگ ٹیکٹکس کر کے جو ہے نا اس کو حلف نہیں دلوایا، اس نے اوتھ نہیں لیا، بلکہ لاسٹ ڈے پہ جب یہ گورنمنٹ ختم ہو رہی تھی، ان کی جو ٹینیور تھی وہ پوری ہو رہی تھی، اس دن جو ہے نا اس نے آ کے حلف لیا بلدیو کمار نے. یعنی یہ صرف جو ہے نا 13-14 گھنٹوں کے لیے ممبر تھا، اس کے بعد جو ہے نا وہ گورنمنٹ ہی ختم ہو گئی. اور پھر یہ جو ہے ابھی یہ والا معاملہ جو ہے نا آج اس کا مطلب ادھر انڈیا سے اطلاع ملی، تو اس کا جو یہاں پہ سوات میں بھائی ہے تلک کمار، اس سے میری بات بھی ہوئی ہے. وہ بڑا خفا تھا کہ یہ مجھے بڑا افسوس ہوا، تو ہمارا جو خاندان ہے ہم بہت خفا ہیں، ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں، ہماری جو پیدائش ہے وہ بھی جو بلدیو کمار ہے اس کی پیدائش بھی پاکستان میں ہوئی ہے اور ہم تو یہاں پہ خوش ہے، تو یہ اس نے جا کے اچھا نہیں کیا ہے.
یہ جو معاملہ ہے اس معاملے میں جو سورن سنگھ ہیں ان کے بیٹے سے بھی آپ کی بات ہوئی ہے؟
بالکل، سورن سنگھ، سردار سورن سنگھ کے بیٹے سے آج میری بات ہوئی ہے. میں نے اس سے صرف یہ کنفرم کرنا تھا کہ جو بلدیو کمار ہے اس کے خلاف کوئی کیس تو نہیں چل رہا ہے، وہ ایکویٹ تو ہو گیا تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہم نے وہ جو ٹرائل کورٹ کی سزا تھی اس کے خلاف ہم نے ہائی کورٹ میں اپیل کی ہے، تو ابھی وہ اس کی ٹرائل تو ہو رہی ہے، تو یہ بیچ میں کیسے چلا گیا؟ اس نے خود بھی جو ہے نا کافی سوالات اٹھائے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، حالانکہ وہ خود بھی پی ٹی آئی سے تعلق ہے اس کا، تو کہتا ہے کہ یہ تو مطلب ایک قاتل جو ہے وہ یہاں سے فرار ہو کے وہاں جاتا ہے، تو اس کے خلاف یہ کیس بھی ہے، یہ کیسے مطلب چلا گیا؟
بلدیو کمار سنگھ اور ان کے لگے آروپوں کے بارے میں جانکاری دے رہے تھے رفت اللہ خان.
سنسنی نہیں، وشوسنیتا کا دم،
بی بی سی ہندی.
آپ بی بی سی کا خاص ایک گھنٹے کا کاریکرم سن رہے ہیں، بات بھارت پرشاست کشمیر کے تازہ حالات کی. آج محرم کا 10واں دن یعنی عاشورہ کا دن ہے. محرم کے دوران نکالے جانے والے جلوسوں کو روکنے کے لیے یہاں پرشاسن نے کرفیو جیسی کڑی پابندیاں لگائی ہیں. یاتایات پر نینترن کرنے کے لیے سڑکوں پر کٹیلیے تار بچھائے گئے ہیں اور بھاری سنکھیا میں ہتھیار بند سرکشا بلوں کی تیناتی ہے. ان پابندیوں کے بیچ ہمارے سہیوگی ماجد جہانگیر آج پہنچے شری نگر کے لال چوک میں. وہاں آج کیا نظارہ تھا اور کیا دیکھا انہوں نے، سنیے انہیں کی زبانی.
بھارت پرشاست کشمیر کے لال چوک علاقے میں ہیں ہم، اور اس لال چوک کو آج پوری طرح سیل کیا گیا ہے اور یہاں جگہ جگہ جو ہے سرکشا بل تعینات ہیں، اور یہاں پہ گھنٹہ گھر کے آگے ایک بڑا بیریکیڈ لگایا گیا ہے جہاں سرکشا بل تعینات ہے اور کسی بھی گاڑی کو جو ہے آگے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. اور خاص کر جو شیعہ ڈومینیٹڈ علاقے ہیں، زڈی بل ہے یا بڈگام کے دوسرے علاقے ہیں، اور وہاں کافی ریسٹرکشنز ہیں، وہاں پہ لوگوں کو وہاں چلنے پھرنے کی بالکل اجازت نہیں دی گئی ہے. اور جو خبریں ہم تک پہنچی یا جو خود ہم نے آج شہر میں دیکھا، آج 10 محرم کا کے پروسیشن کے حوالے سے یہ سارے بندشیں عائد کی گئی ہیں. حالانکہ پرشاسن نے اس پر کچھ نہیں بولا ہے، لیکن مانا یہی جا رہا ہے کہ آج جو ہے جو شیعہ ڈومینیٹڈ علاقے ہیں وہاں ہر جگہ اسی طرح کی ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں. حالانکہ کئی جگہوں پر یہاں لال چوک میں بھی ہمیں ایک کالا جو ہے بینر لگایا گیا ہے، اسی طرح دوسری جگہوں پر بھی جھنڈے لگائے گئے ہیں، بینر لگائے گئے ہیں جو شیعہ ڈومینیٹڈ علاقے ہیں، لیکن کہیں پر بھی 10 محرم کا جو پروسیشن ہے کہیں پر بھی اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. اور 1990 میں کشمیر میں چرم پنتھ شروع ہوا اور اس کے بعد سے لے کر جو ہے ان جلوسوں پر، محرم کے جلوسوں پر جو ہے پرتبند لگائے گئے تھے 90s سے ہی، تو لیکن چھوٹے موٹے جلوس جو ستھانیہ علاقوں میں نکالے جاتے تھے حالانکہ کسی بھی بڑے جلوس کو اجازت نہیں تھی پورے 90 سے, اور اس وقت کشمیر گھاٹی میں جو 5 اگست کے بعد جب جسے 370 انوچھید کو جو ہے ڈائلوٹ کیا گیا, اور اس کے بعد سے کشمیر کے حالات کافی زیادہ کشیدہ ہیں, اور آج 36ویں دن بھی پوری کشمیر گھاٹی بند ہے, پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. اور آج کی دن ہم جو بات کریں گے آج کے دن کی, تو آج کے دن میں ہمیں سری نگر شہر میں جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی کہیں نظر نہیں آیا. اور ایک پترکار سے ہماری بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ انہیں 3 کلومیٹر کا جو سفر تھا وہ 1.5 گھنٹے میں ان کو طے کرنا پڑا, سری نگر کی ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو جانا تھا ڈاکٹر کے پاس, تو لیکن اتنی بندشیں تھیں, اتنی ریسٹرکشنز تھیں کہ ان کو گلی کوچوں سے جو ہے اپنا سفر کرنا پڑا. تو اسی طرح سے دوسرے لوگوں سے بھی ہمیں بات ہوئی جو ڈاؤن ٹاؤن کے علاقے سے آئے, ڈاؤن ٹاؤن کے زڈیبل کے علاقے سے آئے یا دوسری جگہوں سے آئے, اور انہوں نے بھی اسی طرح کے جو ہے تاثرات سامنے رکھے کہ کافی بندشیں ہیں یہاں لال چوک میں, بالکل سنسان ہیں, اگر ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے تو وہ صرف سرکشا بل ہیں, سرکشا بلوں کی گاڑیاں ہیں دائیں بھی اور بائیں بھی, اور جو لال چوک کی طرف جو راستہ آتا ہے ریگل چوک سے اس کو بھی سیل کیا گیا ہے, کسی گاڑی کو آگے بڑھنے کی یہاں اجازت نہیں ہے. ماجد جہانگیر, بی بی سی سری نگر.
جموں کشمیر میں انوچھید 370 کو ہٹائے جانے کے بعد پابندیوں کو لگائے آج 30 سے ادھک دن ہو گئے ہیں. کہیں کہیں پر اور کچھ کچھ جگہوں پر پابندیاں ہٹائی بھی گئی ہیں, لیکن اس کا پورا اثر جموں کشمیر کی ارتھ ویوستھا اور لوگوں کے بیچ رشتوں پر پڑا ہے, اور حالاتوں کی اس چکی میں الگ الگ سمودائے کے لوگ بھی پس رہے ہیں. ہماری سہیوگی پونم کوشل نے سری نگر کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کر لوگوں کی مشکلوں اور ان کی مانسک ستھتی کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی. سنیے ان کی خاص رپورٹ.
کٹیلی تاریں, بکتر بند گاڑیوں سے جھانکتی سینکوں کی سترک نگاہیں اور بندوقیں, بھاری سینیہ واہن, اور ان سب کے بیچ سہمے قدم چلتے انسان. سری نگر کی کسی بھی گلی میں دیکھو نظارہ یہی ہے. یہاں سخت پابندیاں لگے 1 مہینہ ہو چکا ہے. بھارت سرکار دعویٰ کر رہی ہے کہ حالات سامان्य ہو رہے ہیں, لیکن یہاں کچھ بھی سامان्य نہیں لگتا. یہاں کی مشہور ڈل جھیل پر اداسی چھائی ہے, اکا دکا شکارے ہی نظر آتے ہیں. اسی جھیل کے بیچوں بیچ کپڑے کی دکان چلانے والے ایک کاروباری کہتے ہیں,
بہت پرابلمز ہے, لاٹ آف پرابلمز ہے, اور یہ پرابلمز بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی ہے. اور جو میڈیا دکھا رہا ہے, خاص کر انڈین میڈیا جو دکھا رہا ہے کہ نارمل سی ہے, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, میں نہیں پورا کشمیر ان کو چیلنج کرتا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نارمل سی ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے اور دیکھیں یہ نارمل سی کہاں ہے. میرے گھر کے باہر 10 سے 15 سی آر پی والے کھڑے ہیں, تو اوبویسلی اٹس نارمل, بیکاز میں زیادہ کروں گا تو وہ لوگ گولی مار دیں گے, اٹس لائک دیٹ, اس سے تو نارمل ہونا ہی ہے.
استھانیہ پرشاسن لوگوں سے دکانیں کھولنے کی اپیل کر رہا ہے. الگاؤوادیوں نے بھی بند کا آواہن نہیں کیا, تو پھر سری نگر میں سب کچھ بند کیوں ہے؟ یہ کاروباری کہتے ہیں,
فرسٹ آف آل یہ کسی سپریٹسٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کی کال ہے نہیں, جو آپ دیکھ رہے ہیں جو بند ہے, یہ عام ناگرک کی کال, خود بند کیا ہے لوگوں نے, سو اٹس کامن سینس. اگر لوگوں نے خود بند کیا, ان کی مانگ کیا ہے؟ ان کی مانگ تو یہی ہے کہ یہ جو آپ نے آرٹیکل 370 ہٹا دیا ہے, 35A ہٹایا ہے, یہ غلط کیا ہے, جبکہ یہاں کی اسمبلی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے, اگر یہاں کی اسمبلی میں پاس ہوتا تو پھر مے بی کوئی پولیٹیکل سپریٹسٹ اس میں جواب دے دیتے, نہیں وہ کال کراتے, کسی کی کال ہی نہیں ہے.
بھارت کے راشٹریہ سرکشا سلاکار اجیت ڈوبھال نے پترکاروں سے بات چیت میں دعویٰ کیا ہے کہ ادھکتر کشمیری بھارت کے ساتھ ہیں, لیکن سری نگر میں بہت کھوجنے سے بھی ایسے لوگ نہیں ملتے جو جموں کشمیر کا وشیش درجہ ختم کیے جانے یا یہاں جاری سخت پابندیوں کا سمرتھن کر سکیں. شہر کے ایک دوسرے حصے میں میری ملاقات ایک سونا کاروباری سے ہوئی. پہلے ان کے دل میں بھارت کے لیے جگہ تھی, لیکن نئے حالات میں ان کی رائے بدل گئی ہے.
اگر ہمارے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بات کرتے, ہمارا بھی سنتے, تو ہم ان کے ساتھ ہی رہتے, مگر ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوتا ہے. آئی ایم اے پرسن, آئی ایم جسٹ ڈیلنگ وتھ گولڈ, آئی وانٹ اور میں اچھی طرح جینا چاہتا ہوں, مگر اب میں اتنا مجبور ہو گیا ہوں. میرا بچہ کہتا ہے, بابا ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہے, ہم بھی مرنا چاہتے ہیں. ان کو زمین چاہیے, ہماری روزی روٹی نہیں چاہیے, ہماری ہیپینس. اسٹیڈیم سے کیا ہوگا؟ یہ بولتے ہم یہاں پر ٹرین لائیں گے, کس کے لیے ٹرین لائیں گے جب یہاں پر کشمیری نہیں رہیں گے؟ ہم کو کھانا کھانے کے لیے کچھ, وی آر ناٹ ایبل ٹو ارن ایون اے پینی.
इस तनावपूर्ण माहौल का असर लोगों की मानसिक सेहत पर भी हो रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि बीती रात वो बहुत रोए।
यहाँ सब सहमे हुए हैं, दम घुट रहा है। आज रात को मैंने इतना रोया कि बात ही नहीं, क्योंकि दम घुट रहा है, कोई बात नहीं कर पा रहा है। बच्चा चाहता है कि मैं बाहर जाऊं, किसी को बताऊं। मैंने परसों घर वालों से कहा कि मुझे किसी आदमी को बुला, मैं उससे बात करूं, ताकि मेरा जो दम हो रहा है वो थोड़ा इसकी कमी हो जाए।
उनका ये भी कहना है कि इन हालात में लोगों का एक दूसरे से भी भरोसा उठ रहा है।
हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हम बाहर बात नहीं कर सकते हैं। अब हमें यहाँ एतमाद उन्होंने हमारा खत्म कर दिया है। हमें पता ही नहीं घर में कितने मुखबिर हैं, कितने इनके लिए काम कर रहे हैं, कितने और किसी एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। कोई एक बात करने के काबिल ही नहीं रहा है। कह रहा है कि क्या पता है, मेरा बेटा इनके लिए काम तो मत कर रहा होगा, मेरा भाई इनके लिए काम तो मत कर रहा होगा। ये हालत है कश्मीर की।
वहीं श्रीनगर में रहने वाली अल्पसंख्यक सिख आबादी ने अपने आप को हर बहस से अलग कर लिया है, लेकिन मुश्किलें उनकी भी कम नहीं। शहर के एक बड़े गुरुद्वारे के बाहर मेरी मुलाकात एक सिख बुजुर्ग से हुई।
हम तो न्यूट्रल में है, न सरकार के साथ है, न इनके साथ है, हम किसी के साथ नहीं, हम न्यूट्रल हैं बिल्कुल। बड़ी मुश्किल से टाइम पास कर रहे हैं, यही समझ लो नाटी वाले हैं। अब देखो हमारे बच्चों के स्कूल बंद हैं, सुबह स्कूल नहीं जा सकते हैं, बच्चों की टेंशन हमें और बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ ठीक है, सेफ है, हमारे साथ अभी तक किसी ने नहीं छेड़ा। हम क्यों बोलेंगे, ना किसी ने तंग किया, ना कहीं गवर्नमेंट ने किया, ना इन्होंने नहीं किया। हम बिल्कुल ठीक ठाक रह रहे हैं, मगर प्रॉब्लम यही है, बच्चों की टेंशन है।
श्रीनगर में 24 घंटे बिताने के बाद मेरी पहली राय यही बनी कि कश्मीर के लोगों के दिलों में अपने लिए भरोसा पैदा करना ही भारत की सबसे बड़ी चुनौती होगी।
जम्मू कश्मीर में पाबंदियों के बीच कैसे चल रही है लोगों की जिंदगी, श्रीनगर से लौटकर पूनम कौशल की रिपोर्ट। ये बीबीसी का खास एक घंटे का कार्यक्रम है, जिसे आप रेडियो और bbchindi.com पर लाइव सुन रहे हैं।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब जानते हैं कि सोशल मीडिया में आज किन अहम बातों पर चर्चा हुई। इस पर जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी। नवीन, बताएं आज किस किस बात पर सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं।
जी मानसी, सोशल मीडिया पर आज टॉप ट्रेंड जो बना हुआ है वो उर्मिला मातोंडकर हैं, जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उर्मिला ने पार्टी पर जो है भीतर खाने राजनीति करने का आरोप लगाया, और लोकसभा चुनाव के वक्त वो कांग्रेस में शामिल हुई थी, उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। और सोशल मीडिया पर जो है लोग लिख रहे हैं कि फिल्मी सितारों को चुनाव में टिकट नहीं देना चाहिए, वो अगर चुनाव जीत जाते हैं तो कुछ योगदान नहीं करते, और अगर हारते हैं तो पार्टी छोड़ देते हैं, इस तरह की बात लिख रहे हैं।
उर्मिला के अलावा एक और नेता भी चर्चा में है।
जी बिल्कुल, एक और वो भी महाराष्ट्र से हैं और कांग्रेस के ही नेता हैं, कृपा शंकर सिंह, इन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है, इनकी भी ऐसी खबर आ रही है। और चर्चा तो ये भी है कि आने वाले दिनों में शायद वो भाजपा में जा सकते हैं। इन्होंने जो है मुद्दा बनाया है अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस के स्टैंड को, इन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मैं पार्टी के साथ नहीं हूँ, इसलिए पार्टी छोड़ रहा हूँ। तो
और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री किस कारण ट्रेंड कर रही हैं?
जी बिल्कुल, आपकी नज़र बिल्कुल सही जगह है सोशल मीडिया पर। निर्मला सीतारमण का बयान, एक बड़ा अजीब सा बयान आया है, वित्त मंत्री हैं देश के, और उन्होंने कहा है कि भारत का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो इसलिए घाटे में चल रहा है क्योंकि जो अमीर लोग हैं शहरों में रहने वाले, वो कार खरीदने की जगह अब ओला और ऊबर से जाना शुरू कर दिया, उन लोगों ने ओला ऊबर से ज़्यादा जा रहे हैं। और उनके इसी बयान की वजह से अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएँ सोशल मीडिया पर आ रही हैं, इससे जुड़े हुए अलग अलग हैशटैग हैं जो ट्रेंड कर रहे हैं, जैसे निर्मला सीतारमण, ओला एंड ऊबर, मिलेनियल, इस टाइप के ट्रेंड कर रहे हैं। मैं कुछ प्रतिक्रियाएं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो कुछ मज़ेदार प्रतिक्रियाएं हैं। रूपा सुब्रमण्या हैं ट्विटर यूज़र, उन्होंने लिखा है कि लोग ओला उबर से ज़्यादा चल रहे हैं इसलिए कारों की बिक्री गिर रही है, इस हिसाब से तो देश में ड्राइवरों की नौकरियां बढ़नी चाहिए। इसी तरह से एक और ट्विटर अकाउंट ऐसी तैसी डेमोक्रेसी नाम से, उसमें लिखा गया है कि कार की बिक्री इसलिए गिर रही है क्योंकि शहर के लोग ओला उबर से सफ़र कर रहे हैं, ट्रक की बिक्री इसलिए गिर रही है क्योंकि ट्रक ड्राइवर ओला ड्राइवर बन रहे हैं, और ट्रैक्टर की बिक्रियां इसलिए गिर रही हैं क्योंकि किसान जो है वो शहर जाकर ट्रक ड्राइवर जिस ओला गाड़ी को चला रहे हैं उसमें बैठने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरह की अलग अलग प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। इसके अलावा एक और सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड है वो सुबह से बना हुआ है, वो है तबरेज़ अंसारी का ट्रेंड। झारखंड पुलिस ने अपनी चार्जशीट में उनकी मौत की वजह को जो है हत्या नहीं बताया, उन्होंने कहा कि उनकी मौत जो है कार्डियक अरेस्ट से हुई थी।
जी, इस पर हम और आगे भी विस्तार से बताएंगे। सोशल राउंडअप के लिए धन्यवाद नवीन। स्टूडियो की घड़ी में अब से कुछ देर में रात के 8 बजने वाले हैं और आप सुन रहे हैं बीबीसी का खास एक घंटे का कार्यक्रम। आगे आपको सुनवाएंगे खास रिपोर्ट, मोबाइल गेम ना खेलने देने पर बेटे ने की पिता की हत्या। लेकिन उससे पहले सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत प्रशासित कश्मीर पर पाकिस्तान के सभी आरोपों को भारत ने खारिज कर दिया है। भारत की प्रतिनिधि विजया ठाकुर सिंह ने कहा कि भारत ने कश्मीर को लेकर जो फैसला किया है वो संसद में बहस के बाद लागू हुआ है। उन्होंने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया और कहा कि पाकिस्तान जितने आरोप लगा रहा है वो बेबुनियाद और झूठ पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू की गई हैं। इसके पहले पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि भारत बंदूक के बल पर जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को अल्पसंख्यक की स्थिति में लाना चाहता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मांग की कि भारत प्रशासित कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल को बंद किया जाए, वहां लगा कर्फ्यू और संचार सुविधाओं पर लगी रोक को ख़त्म किया जाए और राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए। उन्होंने कश्मीर के हालात की जाँच कराने की भी मांग की। इराक के करबला शहर में मुहर्रम जुलूस के दौरान भगदड़ की खबर है। रिपोर्टों के मुताबिक इस भगदड़ में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई। अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है कि भगदड़ किस वजह से हुई। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। तुर्की ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो सीरिया के उत्तर पूर्वी इलाके में एक सुरक्षित क्षेत्र बनाने को लेकर हुए समझौते के अमल में अड़चन खड़ी कर रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत कावासोग्लू का कहना है कि अमेरिका ने इस दिशा में अभी तक जो कदम उठाए हैं वो दिखावटी किस्म के हैं। जापान ने संकेत दिया है कि वो 8 साल पहले आई सुनामी में बर्बाद हुए फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से रेडियो एक्टिव जल समुद्र में छोड़ने के लिए मजबूर हो सकता है। इस रेडियो एक्टिव जल की मात्रा लाखों टन है। इसका इस्तेमाल दुर्घटना के बाद परमाणु संयंत्रों को ठंडा रखने के लिए किया गया था। मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने नाइजीरिया की सेना पर आरोप लगाया है कि उसने बीते 7 साल से 3,500 से ज़्यादा बच्चों को हिरासत में रखा हुआ है। ह्यूमन राइट्स वॉच नाइजीरिया की सेना पर जिहादी गुट बोको हराम से संबंध रखने का आरोप लगाती रही है। मानवाधिकार संस्था ने इन बच्चों के हवाले से कहा है कि बोको हराम के हमलों के बाद बच्चे गाँव छोड़कर भाग गए थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गिवा मिलिट्री कैंप में हिरासत में रहने वाले बच्चों ने ह्यूमन राइट्स वॉच को बताया कि उन्हें सताया गया था। कुछ ने कहा कि उन्होंने साथी कैदियों को मरते देखा था और सैनिकों को लड़कियों का शोषण करते हुए देखा था। मलेशिया के सारावाक प्रांत में कोहरे से बचने के लिए तकरीबन 5 लाख मास्क भेजे गए हैं। ये कोहरा इंडोनेशिया के जंगलों में लगी आग की वजह से छाया हुआ है। बीबीसी समाचार।
कार्यक्रम में अब रुख झारखंड का। झारखंड के चर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ इरादतन हत्या के आरोप हटा लिए हैं। अपनी चार्जशीट में पुलिस ने कहा है कि तबरेज अंसारी की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक था, इसीलिए अभियुक्तों पर दफा 302 के तहत मुकदमा नहीं चल सकता। तबरेज अंसारी के परिजनों के लिए ये खबर नाउम्मीदी वाली है। उन्होंने इस मामले की जाँच CBI से कराने की मांग की है। सुनिए सरायकेला से हमारे सहयोगी रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
झारखंड पुलिस मानती है कि तबरेज अंसारी की हत्या नहीं की गई, उनकी पिटाई की गई, इससे उन्हें जख्म हुआ, फिर कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी मौत हो गई। लिहाजा पुलिस ने इस मामले के नामजद अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की दफा 302 के बजाय दफा 304 में चार्जशीट दाखिल की है। सरायकेला खरसावां के SP कार्तिक एस ने BBC को बताया कि पुलिस को इन अभियुक्तों के खिलाफ हत्या के सबूत नहीं मिले, इस कारण उन्हें हत्या की धाराएं हटानी पड़ी।
केस जब दर्ज हुआ उस समय 302 में दर्ज हुआ, बट पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड द फाइनल फाइंडिंग्स कॉज ऑफ डेथ जब एस्टेब्लिश करनी थी, वी डिडंट हैव प्रॉपर एविडेंसेस टू शो दैट इट वाज अ मैटर ऑफ अ मर्डर, रादर इट वाज अ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। बट एज सच पनिशमेंट वाइज दोनों ही सिमिलर है, एंड 302 में ओनली थिंग इज कैपिटल पनिशमेंट कैन बी गिवन, एंड 304 में वो नहीं है, कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं है।
गौरतलब है कि बीते जून महीने में सरायकेला खरसावां जिले के धातकीडी गांव में कुछ लोगों ने तबरेज अंसारी की पिटाई की थी। उन पर चोरी के आरोप लगाए गए और पुलिस ने उन्हें इस अपराध में गिरफ्तार भी कर लिया। इसके चार दिन बाद जेल में उनकी तबीयत बिगड़ी, वे अस्पताल लाए गए लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तब भीड़ द्वारा उनकी पिटाई का वह वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ था। उसमें कुछ लोग उनसे जबरन जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे। अपने निकाह के महज दो महीने बाद शौहर खोने का दर्द झेल चुकी शाइस्ता परवीन के लिए यह दर्द असहनीय हो गया है। वे सहजता से नहीं बोल पाती, फिर भी उन्होंने बीबीसी से कहा कि उन्हें अब पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। अब कोर्ट को यह तय करना है कि वह पुलिस के इस तर्क से सहमत है या नहीं। कोर्ट ने इस आरोप पत्र पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। इस मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता अख्तर हुसैन ने बीबीसी से कहा कि उन्हें अब भी इंसाफ की उम्मीद है।
बाकी सेक्शन से दिया हुआ है 302 की जगह में 304 आईपीसी कर दिया गया। 304 कल्पिबुल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मैंने मारा गया लेकिन जान मारने के नियत नहीं मारा गया। अभी कांग्रेस कोर्ट में नहीं लिया गया।
इस बीच चर्चित मुस्लिम नेता सऊदीन ओवैसी ने कहा है कि भाजपा सरकारों में मुसलमानों की जिंदगी की गारंटी नहीं रही। उन्होंने कहा कि तबरेज अंसारी मामले में दफा 302 को हटाना इसे साबित करता है।
यहाँ पर तबरेज अंसारी को 7 घंटे किसी को पकड़कर मारा जाता है और वहाँ की पुलिस नहीं पहुँचती उसको बचाने के लिए, इसीलिए हम मुतालबा करते हैं। और मेरा मानना भी यह है कि वहाँ पर झारखंड में बीजेपी की सरकार वो तमाम एक्यूज को बचाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए 302 निकाल दिया गया है। अगर उसको नहीं मारते, रात भर नहीं पीटा जाता तो जिंदा रहता। जहां कहीं भी बीजेपी की सरकार है वहां मुसलमानों के लिए करबला बना हुआ है।
इधर धाटकीडी गांव में वह खंभा आज भी झाड़ियों से घिरा है जिसमें बांधकर तबरेज अंसारी की पिटाई की गई थी। 17 जून की रात गांव वालों ने उन्हें इस खंभे से बांधकर पीटा था। पुलिस की चार्जशीट के बाद इस गांव के लोग खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि अभियुक्तों की आज नकल रिहाई हो जाएगी। इस मामले की एक अभियुक्त की फुआ ममता ने बीबीसी से कहा,
चाहेंगे सर कि जल्दी से जल्दी लोग निकले। क्या लगेगा सर, अलग तो निर्दोष है सर, जो गया है ना जेल वो तो निर्दोष है, बिना दोष में गया है। जो मतलब दोषी है वो लोग तो घूम रहा है, जो निर्दोष है लोग जेल में।
बहरहाल तबरेज अंसारी के गांव कदमडीहा में आज मुहर्रम का तजिया निकाला गया, लोग मातम में थे। पुलिस की चार्जशीट ने यह मातम और बढ़ा दिया है। तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग का वह वीडियो वायरल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि एक घटना के लिए पूरे झारखंड को बदनाम करना उचित नहीं है। यहाँ उल्लेखनीय है कि झारखंड की मौजूदा भाजपा सरकार के कार्यकाल में राज्य में मॉब लिंचिंग की कम से कम 10 घटनाएं हुई। इनमें 18 लोग मारे गए। एक सच यह भी कि मारे जाने वाले लोगों में 11 मुसलमान थे।
तबरेज अंसारी के मामले में चार्जशीट से हत्या का आरोप हटाने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि इस तरह के मामलों में क्या पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा। भारत में बीते 4-5 सालों में पचासों लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं और इनमें से अधिकतर मामलों में हमले अल्पसंख्यकों पर ही हुए हैं। इस तरह के मामलों में जांचकर्ताओं की भूमिका सवालों के घेरे में रही है। सुनिए बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा की खास रिपोर्ट।
भीड़ की हिंसा में मौत का यह पहला मामला नहीं है जब जांच कर रही पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे हैं। दादरी के अखलाक हों, मेवात के पहलू खान या फिर झारखंड के अलीमुद्दीन अंसारी या बुलंदशहर में मारे गए पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार, मानवाधिकार कार्यकर्ता ऐसे हर मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच से जुड़ी मीनाक्षी गांगुली कहती हैं,
जो हमने ये सारी केसेस जब डॉक्यूमेंट करी थी, हमने ये देखा था कि जो पुलिस है अगर उनको उनको ये मैसेज आता है कि जो ये पर्पेट्रेटर्स हैं इनकी कोई पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है तो वो थोड़े पीछे हट जाते। पुलिस की अपनी भी प्रेजुडिस रहती है। तो जो सबसे बड़ा मामला यहाँ पे है वो ये है कि पुलिस को अपना काम उस तरह से करना पड़ेगा जिस तरह से उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है।
वहीं ऐसी हत्याओं के मामलों पर जागरूकता अभियान चला रहे समूह यूनाइटेड अगेंस्ट हेट से जुड़े नदीम खान कहते हैं,
जब तक कोई
कोई स्पेशल एसआईटी टाइप का सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड नहीं होगा तब तक इन्वेस्टिगेशन का यही हाल होगा। इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस करेगी, लोकल पुलिस जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल पॉलिटिशियन होती है, लोकल एनवायरनमेंट उनके ऊपर हावी होता है, जो लोकल एल्गोरिथम्स होते हैं वो सारी चीजें उनके ऊपर हावी होती है। हर केस में तबाह किया है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, आईओ ने पूरे केस को तबाह कर दिया है। जजमेंट जजमेंट क्या देगा भाई, वो तो एविडेंस के बेसिस पे देगा। जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देगी तो क्या कर सकता है।
मानवाधिकार मामले उठाते रहे वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्वेज का मानना है कि पुलिस भी कई बार सांप्रदायिक मानसिकता से काम करती है।
ये लिंचिंग केसेस कम्युनल केसेस में जहाँ लोकल पुलिस ही कम्युनल है तो लोकल पुलिस को हटा देना चाहिए फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीटली।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे आमोद कंठ भी मानते हैं कि पुलिस पर कई तरह के दबाव होते हैं।
जो एक प्रिवेलिंग पब्लिक ओपिनियन है वो पुलिस को इन्फ्लुएंस कर जाती है, और इन्फ्लुएंस करने का मतलब दबाव होता है पुलिस के ऊपर, जो दबाव होता है उसको वो दूर नहीं कर पाते, और इसका रिजल्ट यह होता है कि इन्वेस्टिगेशन जिस ढंग की होनी चाहिए हो नहीं पाती, एविडेंस लॉस्ट हो जाता है, और बहुत सारे लोग जो है गलत ढंग से प्रेजेंट करते हैं, रिजल्ट होता है कि केस प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं होता है, एविडेंस कलेक्ट नहीं होता है, कोर्ट में केस जाके छूट जाता है।
झारखंड में भीड़ की हिंसा का शिकार हुए अलीमुद्दीन की हत्या के मामले में जब 11 में से 10 अभियुक्तों को जमानत मिली तो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा ने उनका मालाएं पहनाकर स्वागत किया था, लेकिन अलीमुद्दीन के परिवार की ओर से वकील शादाब अंसारी मानते हैं कि इस मामले में पुलिस ने लापरवाही नहीं की।
अलीमुद्दीन का मैटर में वैसा कुछ नेग्लिजेंस नहीं था, इवन जो पुलिस थे वहाँ के एसपी थे काफी उनका इंटरेस्ट रहा है कि इस तरह जो मर्डर हुआ है एकदम बाजार में उनको कन्विक्शन कराया जाए, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे वो भी काफ़ी इस केस में इंटरेस्ट ले रहे थे क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी हो जाता है, मगर उस केस में हम लोगों ने उस तरह का कोई कुछ नहीं देखा।
सवाल ये भी उठता है कि अगर जांच अधिकारी लापरवाही बरते तो क्या हो, वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्वेज बताते हैं।
एक्चुअली कानून है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन को खुद बिगाड़ देता है, खुद एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करता, खुद विटनेसेस को ठीक से प्रोड्यूस नहीं करता, खुद एफआईआर रजिस्टर नहीं करेगा तो पनिशमेंट है लॉ में, लेकिन ये कमजोर है। मुझे लगता है कि इसमें चेंज इन द लॉ होना चाहिए कि पुलिस के ऊपर नियंत्रण हो।
हाल ही में जब बुलंदशहर हिंसा के अभियुक्त जमानत पर रिहा हुए तो उनके स्वागत में जमकर नारेबाजी हुई। बुलंदशहर हिंसा में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के बेटे श्रेय प्रताप सिंह सवाल करते हैं
कि उन्होंने दंगा भड़काया, उन्होंने एक पुलिस वाले को मार दिया, उन्होंने इतनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन करा, और मतलब इस चीज को लोग नैरेट करें कि उन्होंने कुछ अच्छा काम करा है, तो इस बात से मुझे दुख होता है।
श्रेय कहते हैं कि वो अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे।
मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा लेकिन कानूनी कार्रवाई करता रहूंगा, और जब तक सब लोग जेल के अंदर वापस नहीं जाते हैं उन्हें इस चीज का पछतावा नहीं होता कि उन्होंने क्या करा था, तब तक मैं इसको छोड़ूंगा।
अगर पुलिस सही से जांच करे और कानून के दायरे में काम करे तो श्रेय जैसे पीड़ितों की लड़ाई कुछ आसान हो। दिलनवाज पाशा, बीबीसी दिल्ली।
दिन भर शॉर्टवेव 31 और 25 मीटर बैंड यानी 9460, 9510, 11795, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
कर्नाटक के बेलगावी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 21 साल के रघुवीर नाम के एक युवा ने कथित तौर पर पबजी मोबाइल गेम खेलने से मना करने पर अपने पिता की हत्या कर दी, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपनी मां को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। पबजी मोबाइल गेम में खेलने वाला व्यक्ति एक काल्पनिक योद्धा का रूप अख्तियार करता है और काल्पनिक युद्ध भूमि में लड़ाई करता है। मनोचिकित्सकों का ये मानना है कि मोबाइल फोन पर खेले जाने वाले गेम्स युवाओं को एक तरह से उन्हीं में सीमित करके रख देते हैं और इसका असर उनके मानसिक स्वास्थ्य व्यवहार पर पड़ता है और इससे वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और आक्रामक भी हो जाते हैं। सुनिए बंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
रघुवीर कुंभार पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन इसमें उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं है। शनिवार को उनके पिताजी ने उन्हें कहा कि उन्हें मोबाइल फोन पर गेम खेलना बंद करना चाहिए। इसी बात पर रघुवीर भड़क गए और पड़ोसी के घर पर पत्थर फेंकने लगे। पड़ोसी ने पुलिस में इसकी शिकायत की। उनके पिताजी शेखरप्पा रेवप्पा कुंभार ने एक बार फिर उन्हें कहा कि वो मोबाइल गेम खेलना बंद करें। इसके बाद उसी रात करीब 4:30 बजे पड़ोसियों ने रघुवीर की मां के चिल्लाने की आवाज सुनी और फौरन पुलिस को फोन किया। बेलगावी के पुलिस कमिश्नर बीएस लोकेश कुमार ने बीबीसी को बताया, वो अपने माता पिता के कमरे में गया और मां को बाहर जाने के लिए कहा। उसके फौरन बाद उसने अपने पिता पर हमला कर दिया। उस हमले में उसने अपने पिता का सर काट दिया और उसके पैर भी काट दिया। पुलिस कमिश्नर बीएस लोकेश कुमार के शब्द। शेखरप्पा पुलिस विभाग से ही रिटायर हुए थे और एक साधारण जिंदगी गुजार रहे थे। इस हादसे के बाद पुलिस ने रघुवीर को हिरासत में ले लिया है, लेकिन मनोचिकित्सकों को इस हादसे से कुछ ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ है। डॉक्टरों का मानना है कि जब युवकों को टेक्नोलॉजी का लत लग जाती है तो उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, वो बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं और साधारण से बात से भी चिंतित हो जाते हैं। बेंगलुरु में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरोसाइंसेस या निमहांस शट क्लिनिक चलाती है। ये क्लिनिक उन मरीजों के लिए है जिनको बताया जाता है कि टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल करें कि वो स्वास्थ्य और बेहतर बनाएं। निमहांस के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बीबीसी को बताया,
हम 8 से 10 केसेस तो देखते ही हैं एक सप्ताह में, और उसमें से आप मान के चलिए 6 से 8 के बीच में केसेस होते हैं जो गेम रिलेटेड ही उनके इशू होते हैं, और स्पेशली वो यही क्योंकि पबजी कॉमनली प्लेड गेम है तो वो इस गेम के को खेल रहे होते हैं, और उनमें और जो बदलाव आए हैं उनके जीवन शैली में, चाहे सोने की आदत में परिवर्तन आया है, एकेडमिक्स में परिवर्तन आया है, अकेले रहने लग गए हैं वो परिवर्तन है, फैमिली से बातचीत कम होती है, इन सब कारणों से पेरेंट्स उनको इलाज में लेके आते।
लेकिन युवाओं के गेम्स खेलने की लत का ये ट्रेंड सिर्फ शहरों में नहीं हो रहा है, ग्रामीण प्रदेश में भी ये इसकी लत वायरल फीवर की तरह फैल रही है। डॉक्टर विनोद कुलकर्णी हुबली के मानस इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर कुलकर्णी कहते हैं,
रूरल एरिया से हफ्ते में देखे 300-400 आते हैं, हफ्ते में 300-400 सेलेरिक्स आते हैं इसमें रूरल एरिया से, वो क्या वो दूसरा काम करने को एंगेज नहीं रहते हैं। अब
डॉक्टरों का मानना है कि ये लत को फौरन बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन युवकों में इस तरह के परिणामों के बारे में एहसास बढ़ाने की जरूरत है। वो ये भी कहते हैं कि इन युवाओं को काउंसलिंग की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टरों का मानना है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खराब नहीं है पर जब हद से बाहर होता है तो लोगों की जान पर भी बन सकती है। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
आप सुन रहे हैं बीबीसी की खास एक घंटे की पेशकश दिन भर, और कार्यक्रम में अभी आगे बाकी है नेपाल से जुड़ी खबर।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज वीडियो लिंक के जरिए संयुक्त रूप से भारत के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज तक एक पेट्रोलियम पाइपलाइन का उद्घाटन किया। ये दक्षिण एशिया का पहला क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन है। इस मौके पर मोदी ने कहा,
भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने पारिवारिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं। ये पीपल टू पीपल संबंध हमारे बायलेटरल रिलेशंस का आधार है। 2 मिलियन मैट्रिक टन तक के क्लीन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एफोर्डेबल रेट्स पर नेपाल के सामान्य लोगों को प्राप्त होंगे। मुझे उम्मीद है कि हम अपनी भागीदारी को और व्यापक बनाने तथा विविध क्षेत्रों में अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ेंगे।
मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन से नेपाल के लोगों को क्या फायदा होगा? बीबीसी रेडियो संपादक राजेश जोशी ने बीबीसी नेपाली सेवा के सुरेंद्र भुयाल से संपर्क किया और उनसे सबसे पहले यही सवाल किया।
सबसे पहला फायदा यह है कि जो ट्रक और टैंकर की मदद से जो ढुआनी हुआ करता था सालों साल से, तो अब ये बंद हो गया है। इसकी ज़रूरत कोई नहीं पड़ेगी। भारत का बिहार का जो मोतिहारी एक नगर है, तो मोतिहारी से लेके बॉर्डर के इस पार नेपाल के बारा जिला में अमलेखगंज है, वहां तक करीब 70 किलोमीटर लंबा पेट्रोलियम पाइपलाइन बन गया है। वो दक्षिण एशिया की पहले अंतर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन बताया जा रहा है। उसमें अगर पूर्ण क्षमता में वो पाइपलाइन संचालन हो गया तो दैनिक 7000 किलोलीटर तक पेट्रोल, डीजल या मिट्टी तेल, केरोसिन जो आप चाहे वो आ सकता है। इसको आज औपचारिक तौर से उद्घाटन भी कर दिया गया है दोनों देश की प्रधानमंत्रियों ने, तो खुशहाली की लहर छाई हुई है। नेपाल ऑयल निगम ने पेट्रोल और डीजल के भाव में थोड़ा कमी भी कर दिया गया है।
नेपाल के लोग जाहिर सी बात है आप कह रहे हैं कि इससे खुश होंगे, नेपाल और भारत के संबंधों पर भी इसका असर पड़ेगा, और क्या इसकी संभावना है कि भारत और नेपाल के बीच के इस कदम से दोनों देश और नज़दीक आएंगे?
जैसे कि प्रधानमंत्रियों ने कहा कि दो देश की जो सहयोग में जो परियोजनाएं हैं दोनों देश के लगाने में है कई आयोजना, तो उसकी वो भी सफल हो सकती है। उसकी एक बड़ी उदाहरण ये भी है, वही कहा भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी संदेश में, और नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी खुश व्यक्त किया, प्रकट किया।
सुरेंद्र, मैं जब वहाँ नेपाल में था, जितने लोगों से भी मैंने बात की, वो कोई भी आदमी उस दौर को नहीं भुला पाया है जब अघोषित ब्लॉकेड हुआ था और नेपाल के लोगों को पेट्रोल की, डीजल की बहुत किल्लत का सामना करना पड़ा था। अब लगता है उन जख्मों पर मरहम लग चुका है,
शायद थोड़ी सी मलम पट्टी हो सकती है। वो बात सन 2015 की थी, जिस साल में नेपाल में भूकंप आया था विनाशकारी, उसकी भूकंप की कुछ महीने बाद नेपाल में जब संविधान जारी हुआ तो उस पर असंतुष्टि व्यक्त करते हुए नेपाल के तराई के राजनीतिक दलों ने आंदोलन किया, उन्होंने सीमा नाका में बंद भी कर दिया, और उस बंद करने की कदम को दिल्ली ने समर्थन कर दिया, उसकी वजह से उसको नाकाबंदी कहा गया। उसके जो घाव लगे हुए हैं नेपाल में, तो उसका मलम पट्टी करने में ये पाइपलाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन जो है वो बहुत मदद कर सकती है। फिर भी बात यह है कि अब भविष्य में कोई तनाव हो गया तो ये बंद करना थोड़ा मुश्किल ही हो जाएगी, क्योंकि ये पाइपलाइन मोतिहारी से स्टार्ट होती है बिहार में, भारत के अंदर से, और ये पाइपलाइन नेपाल के अमलेखगंज में आके रुकता है। तो इसको, ये स्विच को ऑफ करने के लिए तो दिल्ली ही आगे बढ़नी पड़ेगी। फिर भी ऐसा ना हो हम यही कामना करते हैं। फिलहाल ये जो चल रहा है पाइपलाइन
जी,
और ये बड़ी खुशी की बात है।
क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन से नेपाल को क्या फायदा होगा, जानकारी दे रहे थे सुरेंद्र फुयाल। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और चीन की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा खड़ी करने वाले जैक मा ने आज कंपनी के चेयरमैन का पद छोड़ दिया है। चीन के सबसे धनी लोगों में से एक 55 साल के जैक मा ने अब कंपनी का कारोबार डेनियल जांग के हाथों दे दिया है, और इसी के साथ कंपनी के एक नए युग का भी आगाज हो गया है। जैक मा व्यापार बढ़ाने के अपने अनूठे तरीकों के लिए जाने जाते हैं। अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की बीबीसी बिजनेस रिपोर्टर देवीना गुप्ता से, और उनसे पूछा कि जैक मा के इस कदम से अलीबाबा के व्यापार पर क्या असर होगा और क्या इस कदम का असर भारत के बाजार पर भी होगा।
इस कंपनी ने काफी उतार चढ़ाव जरूर देखे हैं। 1999 से जब एक छोटे से अपार्टमेंट में जैक मा ने से शुरू करा, उसके बाद 2013 में उन्होंने इस कंपनी से सीईओ की पोजीशन से इस्तीफा दिया, और अब उन्होंने जो है वाइस एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन से 55 साल की उम्र में इस्तीफा दिया है। पर उन्होंने ये कहा है कि वो बोर्ड पे ज़रूर रहेंगे कंपनी के 2020 तक। तो निवेशकों की जहाँ तक माने तो उनके लिए ये काफ़ी राहत की बात है कि ये डैनियल जांग, जो उन्होंने खुद चुना है उनको उनके बाद लीड करने के लिए, उनके साथ एक मेंटर की तरह से ज़रूर रहेंगे जैक मा। और ई कॉमर्स चाइना में बहुत धीमी गति से बढ़ रहा है, आप समझ लीजिए पिछले साल के हिसाब से इस साल कम से कम आधा रेट ऑफ ग्रोथ है उसका, करीबन 18%। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी था कि एक नया आदमी एक नई सोच के साथ आए, और ये जैक मा भी जानते हैं कि एक नई सोच की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उनके फेलियर्स देखे जाए, नाकामी देखी जाए, तो एक जगह वो कभी कहीं सफल नहीं हुए हैं, वो है अलीबाबा को दूसरे देशों में स्थापित करने के लिए
जी।
दूसरी जगह जहां वो सफल नहीं रहे हैं वो है कि काफ़ी सारी जो है उनकी वर्क रिलेटेड फिलॉसफी की, जिस तरह से कि लोगों को जो है वीकेंड पे काम करना चाहिए, रातों को काम करना चाहिए, वो हर एक वर्कर ने उनकी फिलॉसफी से सहमति नहीं जताई थी।
और जैक मा खुद भी 12 घंटे लगातार काम करते हैं।
जी बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है कि मेरे पास अगर काम नहीं होता तो मैं रात को किताबें पढ़ता हूँ, क्योंकि वो खुद एक इंग्लिश टीचर रह चुके हैं। और इसी तरह से उन्होंने काफ़ी अलग अलग जगह भी अप्लाई करा था, KFC करके एक कंपनी जो है जो भारत में भी है, वहाँ पर उन्होंने अपना एप्लीकेशन दिया था, पर उन्हें रिजेक्शन वहाँ पे मिली थी। तो इसीलिए कोई आदमी जब अपने लिए एक एंटरप्रेन्योर की हैसियत से आगे बढ़ता है तो लाजमी है कि वो ज़्यादा टाइम लगाएगा, लाजमी है कि इसी तरह से उन्होंने जो है काम करके अब इतने लोग इकट्ठे हो गए उस कंपनी में, कम से कम 1,00,000 लोग जो है उस कंपनी से जुड़े हुए हैं। और उनकी जो फेयरवेल पार्टी है वो एक ओलंपिक साइज स्टेडियम है चाइना में, जहाँ पे करी जाएगी। तो जैक मा जो है इन सब के लिए जाने जाते हैं कि वो एक बहुत ही हार्डवर्किंग आदमी है, चाइना के पोस्टर बॉय रह चुके हैं, रैक्स टू रिचेस वाला स्टोरी है, गरीबी से अमीरी की तरफ आने वाली स्टोरी है।
बिल्कुल,
तो इस दिशा में जब उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो ये नया नहीं था, उन्होंने अपनी जो है सक्सेशन बिल्कुल प्लान करी हुई है। और कंपनी जो आपकी बात अगर मैं शुरू से आप उस पर जोड़ना चाहूं, एक नई दिशा की तरफ भी बढ़ रही है। हमने देखा है कि अलीबाबा जो है लग्जरी गुड्स की तरफ जा रहा है। अलीबाबा ने एक अभी रिसेंटली एक म्यूजिक कंपनी जो होती है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग म्यूजिक कंपनी जो होती है, उसके साथ भी एक गठबंधन करा है। तो एक नई दिशा के लिए उन्हें एक नए आदमी की जरूरत है, जो कि जैक मा ने चुना है।
जानकारी दे रही थी देवीना गुप्ता। और अब चलते चलते एक नजर खेल समाचार पर।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह। सबसे पहले बात हॉकी की करते हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH ने टोक्यो ओलंपिक क्वालिफायर के लिए टीमों की रैंकिंग के बाद ड्रॉ भी जारी कर दिया है। भारत को इस टूर्नामेंट के लिए दूसरी रैंक दी गई है। टूर्नामेंट में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना सबसे पहले रूस से होगा, महिला टीम का पहला मुकाबला अमरीका से होगा। टोक्यो ओलंपिक क्वालिफायर 27 अक्टूबर से 3 नवम्बर तक खेले जाएंगे। तो वहीं टोक्यो ओलंपिक अगले साल होगा। क्या कहना है वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव का भारतीय पुरुष हॉकी टीम को लेकर, आइए जानते हैं।
देखिए, जहां तक भारतीय पुरुष वर्ग का सवाल है तो पुरुष वर्ग में भारतीय हॉकी टीम का पलड़ा निश्चित रूप से भारी है। रूस को भारत ने 10-0 से हराया था और वो अभी बहुत पुरानी बात नहीं है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो FIH ओलंपिक क्वालिफायर में जब रूस का सामना भारतीय टीम करेगी तो शुरुआत में ही, साल की शुरुआत में ही जो FIH सीरीज फाइनल में रूसी टीम को 10-0 से मात दी थी भारत ने, वो हार की यादें उधर रूस में भी ताज़ा होंगी। और इसके बावजूद हालांकि भारत के कोच जो हैं ग्रैहम रीड और कप्तान मनप्रीत सिंह, दोनों ने कहा है कि वो रूस को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि मनप्रीत ने कहा कि जो नए कोच आए हैं उनकी देख रेख में, उनके मार्गदर्शन में भारतीय टीम बहुत अच्छा कर रही है, वो टीम में पॉजिटिविटी लेकर आए हैं, सकारात्मकता लेकर आए हैं।
ये थे वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। टोक्यो ओलंपिक क्वालिफायर के ड्रॉ सोमवार यानी कल स्विट्जरलैंड में निकाले गए। दुनिया की 5वें नंबर की भारतीय पुरुष टीम ड्रॉ के पॉट 1 में थी। उसका सामना पाकिस्तान, रूस या ऑस्ट्रिया में से किसी एक टीम के साथ होना था। ड्रॉ निकलने के बाद भारतीय पुरुष टीम के सामने रूस की चुनौती सामने आई। ये दोनों टीमें भुवनेश्वर में आमने सामने होंगी। रूस की वर्ल्ड रैंकिंग 22 है। दोनों टीमों के बीच 1 और 2 नवंबर को लगातार 2 मुकाबले खेले जाएंगे। और अब जाने से पहले बात भारतीय स्टार धाविका दुति चंद की करते हैं। दुति चंद ने घोषणा की है कि उनका दोहा में होने वाली वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के लिए 25 सदस्यीय टीम में चयन हो गया है। ये चैंपियनशिप आगामी 27 सितंबर को शुरू हो रही है। दुति चंद को इस साल अर्जुन अवार्ड के लिए खेल विभाग में नामित किया था, लेकिन डेडलाइन मिस हो जाने के कारण उनका नाम खारिज कर दिया गया। उड़ीसा के एक गांव के गरीब परिवार से आए दुति चंद का जीवन काफी संघर्षों से भरा है। उन्हें अपने खेल में आगे बढ़ने के लिए सरकारी सहायता की जरूरत पड़ी, जिसके कारण वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की धाविका बन सकी। खेल समाचारों में आज इतना ही।
कार्यक्रम में आपसे विदा लें उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर वात्सल्य राय से।
बीबीसी समाचार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत प्रशासित कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। भारत की प्रतिनिधि विजया ठाकुर सिंह ने कहा कि पाकिस्तान जितने आरोप लगा रहा है वो बेबुनियाद और झूठ पर आधारित हैं। इसके पहले पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि भारत बंदूक के बल पर जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को अल्पसंख्यक की स्थिति में लाना चाहता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर के हालात की जांच कराने की मांग भी की। इराक के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक करबला शहर में भगदड़ होने से कम 31 लोगों की मौत हो गई। भगदड़ में 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। सरकार के एक प्रवक्ता के मुताबिक भगदड़ आशुरा के दौरान हुई। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का संपादन किया राजेश जोशी ने, तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। अगला प्रसारण नमस्कार भारत कल सवेरे, तब तक दुनिया भर की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।